ஓம் சாந்தி. பாப் தாதா நே ஹம் பச்சோ கோ பஹத் ஸ்ரேஷ்ட ஸ்வமான் தியே ஹே. ஔர் உன் ஸ்வமானோ கோ ஜப் ஹம் ஸ்மிருதி மே லாதே ஹே तो नशा चढ़ जाता है कि बाबा ने हमें क्या से क्या बनने की प्रेरणा दी है. जब बाबा ने हम बच्चों को इस विशाल विश्व से चुना तो ऐसे ही तो नहीं चुना है, बहुत बड़े कर्तव्य के लिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी के लिए हम सभी को चुना है. और इसीलिए जब बाबा हम बच्चों को ये स्वमान देते हैं कि बच्चे तुम आधार मूरत हो, उद्धार मूरत हो, साथ ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये विश्व के पूर्वज आत्माएं हो. झाड़ को इमर्ज करें तो झाड़ के तने में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम सभी बच्चे भी बैठे हैं. सारे वृक्ष तक, पत्ते पत्ते तक वो सकाश पहुंचाने के लिए. तो इतना ऊंचा स्वमान के साथ इतना ऊंचा कर्तव्य देते हुए बाबा ने हर एक बच्चे को अपना महत्व का एहसास कराया है. और इसीलिए बाबा जब हमें उस रूप में देखते हैं तो बाबा हम बच्चों से भी यही चाहते हैं कि बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत विशेष विशेष आत्माएं हो. उस स्वरूप में बाबा हम बच्चों को देखते हैं. जब हम भी अपने आप को उस स्वरूप में देखते हुए अपने महत्व को समझेंगे तो शायद जो बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी और कर्तव्य हम बच्चों के कंधे पर रखा है उसको हम बहुखूबी निभा सकेंगे. यानी अंत में जब इस संसार से प्रयाण करने का समय आएगा तो कम से कम हमें वो आत्मसंतुष्टि होगी कि हाँ, बाबा ने जो मुझे कर्तव्य सौंपा था उसका कम से कम मैं 10% या 20% या 50% वो कार्य मैं कर सका, उसकी आत्मसंतुष्टि महसूस होगी. मुझे याद आता है कि जब हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय जगदीश भाई जी अपने अंतिम दिनों में मधुबन में थे और उस समय उन्होंने मधुबन वालों को ये क्लास कराया था, जिस क्लास में उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि बाबा ने मुझे बहुत सारी सेवा के लिए निमित्त बनाया, बाबा ने बहुत कुछ कराया, लेकिन आज जब जाने का वक्त आ रहा है, क्योंकि ये तो महसूस हो ही गया था जब जाना है, तो कहा जब जाने का वक्त आ रहा है तो उस समय मुझे यही महसूस हो रहा है कि मैं बाबा की आश को पूर्ण नहीं कर पाया. इतने बड़े भाई जिनसे बाबा ने इतनी सेवा कराई, फिर भी अंत में उन्हें एक ये एहसास होने लगा कि मैं बाबा की आश को पूर्ण नहीं कर पाया, उसके पहले मुझे जाना पड़ रहा है। काश बाबा मुझे थोड़ा वक्त और दे दे, या ड्रामा मुझे थोड़ा वक्त और दे दे, तो मैं बाबा की उस आश को पूरा कर दूं। और हम सभी जानते हैं कि बाबा की एक ही आश है, और वो बाबा की आश है गीता के भगवान को सिद्ध करना। तब उन्होंने ये बात कही थी, क्या जाने के वक्त मुझे ये महसूस हो रहा है कि उस आश को मैं पूर्ण नहीं कर पाया, उसके पहले मुझे जाना पड़ रहा है। भावार्थ ये, जब वो क्लास करा रहे थे और उनका हृदय इतना भर आया कि आगे बोल नहीं पाए और वहीं क्लास को समाप्त कर दिया, हम सभी को ये एक बहुत पावरफुल इशारा देने का प्रयत्न कर रहे थे कि हम सभी भी अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। बाबा बहुत कुछ करा रहे हैं, बाबा करा रहा है, लेकिन जो मुझे करना चाहिए वो मैं कितना कर पा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी अंतिम समय आए और उस समय हमें एहसास हो कि मैंने भी बाबा की आश को पूरा नहीं किया। बाबा ने जिस लिए मुझे सिलेक्ट किया था, उस सिलेक्शन के पीछे बहुत बड़ा मतलब है बाबा का, बहुत बड़ी आश है। उसके हिसाब से बाबा ने वो विशेषताएं भी भरी है, लेकिन क्या वो हम संपूर्ण रीति से पूरा कर पा रहे हैं? तो बहुत सुंदर ये टॉपिक है कि हमारी सामूहिक जिम्मेवारी कहां कहां और किस किस प्रकार से है, उसका हमें पता होना चाहिए। पहली जिम्मेवारी हमारी स्वयं के लिए है, और स्वयं के लिए जब मैं कहती हूं, आप अपने मन के अंदर ये चित्र इमर्ज करो, विजुअलाइज करो कि चार सर्कल है, तो पहला सर्कल है स्वयं, दूसरा सर्कल है यज्ञ, हमारी सामूहिक जिम्मेवारी यज्ञ के प्रति, तीसरा सर्कल है विश्व, और विश्व में भी दो बातें आती हैं, एक है भक्त आत्माएं कहो, अनेक दुखी आत्माएं कहो, पीड़ित आत्माएं कहो, और दूसरा है प्रकृति। जब हम पूर्वज हैं, हम आधार मूरत उद्धार मूरत है, तो इन सब के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। उसके लिए अगर हम स्वयं से आरंभ करें, तो मेरी सबसे पहले अपने आप को परिवर्तन करने की क्या क्या जिम्मेवारी है? अपने ही संकल्प को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है मेरी, दृष्टि वृत्ति स्मृति को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है। तो स्वयं में ये छह बातें विशेष आती है जिसको मुझे परिवर्तन करना है, और स्थूल रूप में अगर देखा जाए तो मेरे अपने कर्म, मेरी चलन, मेरा चरित्र, मेरा हर कदम, ये स्थूलता में जो दुनिया को भी दिखाई देता है, वो छह बातें मुझे अपने आप में ही दिखाई देती है और किसी को नहीं दिखाई देती है। और इसीलिए कहीं न कहीं हम उसके लिए अलबेले हो जाते हैं, हो जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो जब इस जिम्मेवारी का एहसास होने लगे मुझे, तब अलबेलापन छूटने लगेगा। दूसरी जिम्मेवारी जो मेरी है, कहा यज्ञ के प्रति, यज्ञ का गायन शास्त्रों में भी बहुत है। कहा जाता है कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। वो ऋषि मुनि कोई और नहीं, हम सभी एक एक ऋषि है। सोचो, वो ऋषि मुनि जो थे, ब्रह्मचर्य व्रतधारी पवित्र आत्माएं, त्याग तपस्या करने वाले, तो वो ऋषि और कोई नहीं है, हम ही है, जो उस ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके पवित्रता का पालन करते हुए, जिसका गायन है कि हड्डी हड्डी यज्ञ के अंदर स्वाहा किया दधीची ऋषि ने, वो ऋषि और कोई नहीं, हम सभी है। और इसीलिए जब वो ऋषि यज्ञ करते थे, तो कहा जाता है कि उस यज्ञ के अंदर असुर, जानवरों की अशुद्धि को फैलाने के लिए हड्डियां डालते थे, जिस कारण से जो यज्ञ किया जाता था वातावरण के शुद्धिकरण के लिए, वाइब्रेशन के शुद्धिकरण के लिए, जब वो हड्डियां डालते थे तो वातावरण पूरा अशुद्ध कर देते थे। उसके लिए कहा जाता है कि श्री राम अवतार हुआ, श्री कृष्ण का अवतार हुआ, कि ये असुरों का खात्मा करने के लिए। आज सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो इस यज्ञ के शुद्धिकरण के लिए हम एक एक जिम्मेवार है। और इसीलिए अगर कोई आसुरी वृत्ति के माध्यम से इस यज्ञ के अंदर अशुद्धि डाल करके वातावरण को अशुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उस वातावरण को अशुद्ध न होने दे, नहीं तो कहीं उस पाप के भागीदार हम भी बन जाएंगे। अगर हम समझते हमारा क्या जाता है, हमारा कोई मतलब नहीं है, ये फीलिंग आना, माना हम उस यज्ञ के लिए जिम्मेवार नहीं है, उस यज्ञ के पवित्रता के लिए हम जिम्मेवार नहीं है। और इसीलिए जब उस वातावरण का अशुद्धिकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पाप के भागीदार हम भी बन रहे हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि हम प्रतिबद्ध हो जाए कि नहीं, इस यज्ञ के लिए जो बाबा यज्ञ का इतना महत्व देते हैं, यह यज्ञ के किले को मजबूत करना है, उसकी एक एक ईंट इतनी पावरफुल हो, जिस यज्ञ के अंदर नियम मर्यादाओं की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेवारी है, सामूहिक जिम्मेवारी है। और इसीलिए मेरा कोई भी कर्म ऐसा न हो जो इस यज्ञ के वातावरण को, ये यज्ञ के वायुमंडल को कोई भी प्रकार से अशुद्ध करे, ये मेरी सामूहिक हम सभी की सामूहिक एक जिम्मेवारी है, क्योंकि जिस भगवान ने इस यज्ञ के अंदर पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित किया है, जब ये अशुद्धि उसके अंदर पड़ती है तो वो पवित्रता की अग्नि बुझती है, और अगर बुझती है तो वातावरण अशुद्ध होता है। इसलिए इस पवित्रता की अग्नि को बुझने नहीं देना है, क्योंकि यही अग्नि विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। संसार परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। उसी समय एक एक ऋषि का साक्षात्कार दुनिया को होगा कि दिखने में इतने साधारण थे लेकिन यही तो महान ऋषि थे। महान ऋषियों का जो गायन है कि भाई हजारों साल वो जीते थे, ये हजारों साल ऐसे ही नहीं कहा गया है, क्योंकि संगम का हिसाब बाबा ने बताया है एक का 100 गुना। इसीलिए बाबा कहे ये छोटा सा युग जो है ये छोटा नहीं है, लेकिन उसमें उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने हजारों में हो जाता है। और इतने सालों का जीवन समर्पित करना तो कितने हजार साल के ऋषि हुए, ये कैलकुलेशन करो। आज दादियों को जब हम देखते हैं कि इतने महान ऋषि थे जिनके पास वो संकल्प की सिद्धि थी, तो इसी तरह अगर किसी ने 20 साल 25 साल 15 साल भी अगर यज्ञ में लगाया, अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा किया है, तो कितने हजार साल बराबर के वो ऋषि हुए। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम जो कर्म यज्ञ के अंदर कर रहे हैं ये कर्म 5000 साल के लिए सारे कल्प के लिए एक विधान बनता है, दुनिया के लिए सारे संसार के लिए ये विधान है। हमारा एक एक कर्म अगर सारे संसार के लिए 5000 साल तक का एक विधान बनता है तो ये ऋषि कितने पावरफुल होंगे, सोचो तो सही। क्या मैंने अपने आप को उस रीति से देखा है कि मैं वो महान ऋषि हूं? तब बाबा कहते आप साधारण नहीं हो। तो इस यज्ञ की पवित्रता को, वातावरण को, वाइब्रेशन को शुद्ध रखना, उसके लिए हम खुद के, हम सब की एक सामूहिक जिम्मेवारी है। वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं। आज कोई भी अगर बाहर वाला आता है और ये महसूस करता है कि हम एक अलग दुनिया में पहुंच गए हैं तो ये ब्राह्मणों की वृत्ति के वाइब्रेशंस के कारण है, क्योंकि बाहर में इतनी अशुद्धि के वाइब्रेशन है जो यहां आते उस पवित्र वाइब्रेशंस को महसूस करता है, क्योंकि इसी यज्ञ के द्वारा खाली विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है ऐसा नहीं है, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। ये एक एक ऋषि परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। उनको उनके जीवन को देखकर, उनके कर्म को देखकर, उनके कदम को देखकर, उनके चरित्र को देख करके लोग कहेंगे कि वाह भगवान तेरी लीला परंपार है, तुमने कैसे कैसे को चुना और कैसे क्या बनाया। ये विश्व परिवर्तन का कार्य, भगवान ने किसी को नहीं चुना, कोई बड़े बड़े साइंटिस्टों को नहीं चुना, भगवान ने किसी बड़े बड़े धर्म पिताओं को नहीं चुना, भगवान ने कोई महात्माओं को नहीं चुना, किसको चुना है? हम साधारण को, लेकिन साधारण को ऐसा ऋषि बनाया कि जो परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। आज जिस तरह प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा के हर कदम को देखते हुए, याद करते हुए हम भी अपना कदम रखने का प्रयत्न करते हैं, है ना? ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्माचारी है हम। ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण किया, उसकी जो गाथाएं दादियों ने सुनाई, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। भले हमने इन आंखों से ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को नहीं देखा हो, लेकिन इनकी गाथाओं के कारण हमारे सामने पूरा उनका चरित्र स्पष्ट है, और इसीलिए उनके कदम में कदम रखने का प्रयत्न हम सभी कर रहे हैं, और तभी उस संपूर्णता या बाप समान की स्थिति पर सहज पहुंच सकते हैं। ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। और भी बहुत सी बातें हैं जो मन के अंदर आ रही है, लेकिन तीसरे कदम पर मैं जाती हूं कि जो विश्व का सर्कल है, उसमें जैसे बाबा ने कहा कि प्रकृति को सतोप्रधान बनाना है, आपकी सतोप्रधान स्थिति से प्रकृति को सतोप्रधान बनाना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है सामूहिक रूप में। और इसीलिए जब हम संगठित रूप में योग करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस वाइब्रेशन से यज्ञ और यज्ञ से विश्व, विश्व के अंदर प्रकृति को भी हम सतोप्रधान बना रहे हैं। और जो भक्त आत्माएं या कोई पीड़ित आत्माएं हैं, जो बहुत पीड़ा अनुभव कर रही है, दुख शांति के अंदर उनका जीवन है, उन तक भी वो वाइब्रेशंस जब पहुंचाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे नमः शाम का योग जब करते हैं, तो आप उन भक्तों के लिए विधाता बन जाते हो। बाबा की एक अव्यक्त मुरली में पढ़ रही थी, यही संडे की मुरली, आने वाली संडे की मुरली है 18 तारीख की, जिसमें बाबा ने बहुत स्पष्ट ये बात कही है कि आपकी तपस्या के जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन जब प्रवाहित होते हैं वायुमंडल के माध्यम से और उन भक्तों के पास जाते, तो उन भक्तों के लिए आप विधाता बन जाते हो। और जितना आप दाता विधाता बन करके देते जाएंगे, उतना आपका शुद्धिकरण भी हो रहा है। बहुत सुंदर बाबा की मुरली है कि महातपस्वी बन करके विधाता बनो, दाता विधाता बनो, और अनेकों के भाग्य को जगाने वाले। अमृत वेले जब हम बैठते हैं, तो हम अपने भाग्य के साथ साथ दूसरी आत्माओं के भी भाग्य जगाते हैं, उनके भाग्य के लिए हम विधाता बनते हैं। कईयों को दूर बैठे भी हमारा साक्षात्कार होगा आने वाले समय में, और वो साक्षात्कार के माध्यम से वो चलेंगे इस पथ पर। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा, दादियों का साक्षात्कार होगा, और इस पथ पर वो अनुसरण करेंगे, और उस समय साक्षात रूप में हमें देखेंगे और हमसे वो प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा कहे वो अंतिम समय आकर कहेंगे बस अंजलि दे दो हमें, आपने इतने साल जो प्राप्त किया है उसकी हमें अंजलि मिल जाए। और उस समय अगर हम ये कहे कि भाई मेरे पास तो कोई अनुभव नहीं है, या मैं तुझे क्या दे सकता हूं, मैं खुद ही ले रहा हूं, तो हम देने का कार्य कब करेंगे? क्योंकि बाबा ने एक लाइन बहुत सुंदर बोली है 18 तारीख की मुरली में कि बच्चे जो यहां विधाता बनते हैं वही विश्व के राज्य अधिकारी बनता है, नहीं तो साधारण प्रजा में चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से देख सकते हैं कि हम विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं या साधारण प्रजा में जाने वाले हैं। तो जो बाबा कहे विधाता बन करके दूसरों को देने का कार्य करता है वही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। जो यहां भी लेने का ही कार्य करेगा वो तो नेचुरली प्रजा में ही जाएगा या प्रजा में भी दास दासी में ही जाएगा। इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर ये बात कही है कि मेरे बच्चे साधारण प्रजा नहीं बनेगी रॉयल फैमिली में, क्योंकि अगर 16108 की माला है रॉयल फैमिली की, राज्य अधिकारी आत्माओं की, तो इसीलिए हमें उसमें तो नंबर लगाना ही है हमारा। तो वो तब होगा जब हम वो विधाता स्वरूप में आकर के अनेकों के भाग्य को जगाने का कार्य करते हैं। ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी। तो इसीलिए कहा कि जब नमः शाम के समय हम योग करते हैं तो वो वाइब्रेशन से विश्व के वाइब्रेशंस को भी प्यूरिफाई करने का कार्य करते हैं। भक्त आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। अनेक दुखी परेशान आत्माओं को जो वरदान चाहिए वो वरदान देने का कार्य हम कर रहे हैं। ये नमः शाम का योग ऐसे ही नहीं खाली कर रहे हैं कि बस बाबा को याद करना है, मैं आत्मा समझ करके बाबा को याद कर रही हूं, यही नहीं है खाली। लेकिन ये समय में ये घंटे में हम विधाता बनते हैं, अनेकों का भाग्य परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं और उसी में ही हमारा अपना भी जमा का खाता बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है और इस तरह से स्वयं के परिवर्तन की, यज्ञ के प्रति हमारी जिम्मेवारी और विश्व और प्रकृति और अनेक आत्माओं के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है विश्व के अंदर, ये सामूहिक जिम्मेवारी जितना हम संगठित होकर के करेंगे उतना उस वाइब्रेशंस को बहुत अच्छी तरह से हम फैला सकते हैं। तो इसीलिए आज जब मैं इस विषय के ऊपर चिंतन कर रही थी और जब ये नमः शाम के समय भी मैं यही देख रही थी, एक एक ऋषि बैठा है और एक एक ऋषि कैसी यज्ञ के अंदर तपस्या करके सारे विश्व के लिए विधाता स्वरूप जो है उसका है, उस स्वरूप को जब मैं विजुअलाइज कर रही थी आप सब में, तो बहुत खुशी का अनुभव हो रहा था और साथ में ऐसा लग रहा था कि सचमुच संगठित रूप से उस वाइब्रेशंस को हम कितना सुंदर प्रवाहित कर रहे हैं यज्ञ की नियम मर्यादा की सुरक्षा के साथ साथ विश्व के अंदर भी। तो ऐसे महान ऋषियों को सलाम करेंगे, सलाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत विशाल है, मैं आधे घंटे के अंदर तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई या जितना कर पाई, लेकिन मैं समझती हूं कि कम से कम आपके अंदर भी एक सोच को ट्रिगर जरूर किया है, उसके ऊपर आप जरूर सोचिएगा और भी बहुत कुछ अंदर से आपको मिलेगा निकलेगा। विचार सागर मंथन जितना करेंगे इस विषय के ऊपर और आगे उसमें बहुत कुछ आपको अनुभव कर सकेंगे और आने वाले संडे की मुरली में बहुत कुछ उसके लिए बाबा ने कहा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। संकल्पों के दीप जलाएं।